चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन उन चक्रवर्ती सम्राट पे एक बार एक बहुत बड़ा संकट आ गया। संकट ये आ गया कि हालांकि उन्होंने उसको संकट के रूप में लिया नहीं। महाराज परीक्षित एक बार वन में चले गए थे और भूखे प्यासे थे और काफी समय तक कुछ खाया नहीं था, कुछ पिया नहीं था। उस कारण से महाराज परीक्षित बहुत पीड़ित थे भूख और प्यास से। तो उस अवस्था में वो एक ऋषि के आश्रम में जाते हैं और ऋषि के आश्रम में जाकर वहां पर जो आश्रम में जाते हैं तो देखते हैं कि वो ऋषि जो है समाधि में है। तो भूख प्यास के कारण स्वाभाविक होती है, हम लोग भी कभी भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, तो हम लोग कभी कभी हम लोग क्रोध कर देते हैं। मान लीजिए हम लोग घर पे पहुंचे, ऑफिस से पता चला घर पे खाना बना ही नहीं है, तब हम लोग ब्रह्मास्त्र निकालते हैं। आप लोग इतने सारे लोग मिलकर तो हमारे लिए खाना रेडी नहीं कर सकते। उसी तरह से जब महाराज परीक्षित पहुंचे तो उनको स्वाभाविक उनको लगा कि वो जो ऋषि है उनका सत्कार करेंगे, उन्हें कुछ खाने को पीने को कुछ देंगे, लेकिन वो तो समाधि में बैठे हुए थे। तो महाराज परीक्षित क्रोधित अवस्था में उन्होंने मरा हुआ सांप उस ऋषि के गले में डाल दिया और वे अपने राजे के बाद अपने वापस चले गए। ये जो घटना थी उस ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी, उनको मालूम पड़ा। तो श्रृंगी जो थे ब्राह्मण थे, पर पहले तो बालक थे फिर ब्राह्मण थे और उनके पास तपस्या का बल भी था। तो क्रोध के कारण उन्होंने कहा कि ये सारे जो क्षत्रिय लोग हैं ये कुत्तों के समान हैं और इनको दरवाजे पर रहना चाहिए। उनकी हिम्मत कैसे हुई कि अंदर आके मालिक के साथ मालिक के थाली में खाने। इस तरह से उस छोटे से बालक ने क्रोध आया और कहा कि अब मैं एक महाराज परीक्षित अपने आप को समझता क्या है कि भगवान श्री कृष्ण चले जाने के बाद क्या इस संसार में हम लोग की कोई कीमत नहीं है। तुरंत उस छोटे से बालक ने महाराज परीक्षित को श्राप दिया कि 7 दिन के अंदर तक्षक नाम का एक राक्षस, तक्षक नाम का एक सर्प आके तुमको डस गए। अब महाराज परीक्षित को ये जब बात पता चली तो महाराज परीक्षित ने तुरंत ही अपना सब कुछ त्याग दिया और गंगा जी के तट पर जाकर बैठ गए। तो जैसे ही ये न्यूज सब जगह फैल गई, जैसे सारे टीवी चैनल ने टेलीकास्ट कर दिया कि महाराज परीक्षित अभी 7 दिन की मृत्यु होने वाली है, तब समस्त ब्रह्मांड के जितने सारे राजर्षि देवर्षि जितने सारे लोग थे और जितने सारे भूमि लोग थे, वो सब के सब ये देखने के लिए कि महाराज परीक्षित जो भगवान के प्रेमी भक्त है उनकी मृत्यु, उनको तक्षक नाम के सांप के द्वारा मृत्यु होगी, नहीं। निश्चित रूप से भगवान की दिव्य लीला है ये। उसको देखने के लिए सब लोग वहां पर आ गए, कहां पर आ गए, गंगा जी के तट से। और महाराज परीक्षित ने सबका स्वागत किया, किसी सरकार के सबका स्वागत किया और उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि दो प्रश्न पूछे कि जिसकी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है उसको क्या करना चाहिए, और कोई और ऐसा और वैसे भी करने लायक ऐसा कौन सा काम है जो हमेशा करना चाहिए। तो ये जब प्रश्नों को पूछ रहे थे उसी समय वहां पर व्यास नंदन शुद्ध उस समय वहां पर आ गए। अभी उम्र के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर जो ऋषि थे वो हजारों साल की उम्र के थे, उसमें वेद व्यास जी थे, नारद जी खुद बैठे हुए थे, परशुराम जी थे और बहुत सारे लोग महाराज परीक्षित की सभा में वहां पर आए हुए थे। और वहां पर 16 वर्ष के सुखदेव गोस्वामी ने उस स्थान में प्रवेश किया। जैसे ही प्रवेश किया सब लोग थार थार करके सब खड़े हुए, महाराज सुखदेव गोस्वामी का स्वागत किया, सब लोग खड़े हुए। और तब उन्होंने महाराज परीक्षित ने उनकी चरणों में विधिवत उनकी पूजा की, विधिवत पूजा करके उनको आसन में बैठा दिया और बिठा कर उन्होंने भी वही प्रश्न किया कि हे सुखदेव गोस्वामी, मेरा परम सौभाग्य है, मैं तो क्षत्रिय हूँ और क्षत्रियों तो हमेशा इंद्रिय भोग में लगा रहता है, लेकिन मैं क्षत्रिय होने के कारण भी मुझे आपके दर्शन मिल रहे हैं, आपके साक्षात दर्शन मुझे मिल रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है, तो मुझे ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे कि मुझे वो भगवान का धाम प्राप्त हो जाए। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा वो है श्रीमद् भागवत। तो मैं इनको श्रीमद् भागवत का श्रवण कराऊंगा और तुम उसको श्रवण करो और तक्ष के आने से पहले तुम्हें भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी। तुम टेंशन मत लो, ये वो चिंता बस शांति से बैठो और कथा श्रवण करो। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को 4 दिन का कथा हो चुकी है, आज जहाँ पर हम लोग है वहां पर 4 दिन की कथा समापन हो चुकी है और बचे मात्र 3 दिन के जीवन। और तो 4 दिन बीत चुके थे और 9 स्कंद समाप्त हो चुके हैं और 10वें स्कंद का प्रारंभ होने वाला था। तो 9वें स्कंद के अंत में सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को एक वंश परंपरा का वर्णन किया, चंद्र वंश और सूर्य वंश और यदुवंश के भी जो धर्म परायण राजा थे उनका उन्होंने वर्णन किया। तो उस वर्णन करने में सुखदेव गोस्वामी ने बलराम जी को रोहिणी का पुत्र भी बताया और बलराम जी को देवकी का पुत्र भी बताया। तो इसको सुन के थोड़ा महाराज परीक्षित अचंभित हो गए, अरे ऐसा कैसे संभव है, आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी कितना भी जुगाड़ कर रहे लेकिन ये नहीं कर सकता। तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से बड़े विनीत होकर बड़े नम्रता से ये प्रश्न पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो समस्त प्राणियों के जीवन दाता है, सर्वात्मा है, उन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर जो जो लीलाएं की मैं उनको जानना चाहता हूँ। बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं वो उसके बारे में तो मुझे जानना ही है, इस कारण के बारे में मुझे जानना ही है, लेकिन उसके साथ भगवान ने और भी जो लीलाएं की है उसके बारे में आप मुझे बताइए। क्योंकि भगवान
हरे कृष्ण,
क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं है वो इतनी वो ऐसे अमृत नहीं है कि जो महामुनि लोग है, जो संसार जो महामुनि लोग है, जो संसार की जो कृष्णा है उससे मतलब उससे ऊपर है, उनको भौतिक संसार से मतलब नहीं है। ऐसे जो महामुनि लोग है वे भी भगवान श्री कृष्ण की लीला में गाते रहते हैं, उनको संसार से मतलब नहीं है, तृप्त होकर संसार से मतलब नहीं और उन्हें अपने ब्रह्मानंद में लीन है। लेकिन वे लोग जब कृष्ण कथा को सुनते हैं और वो भक्ति भक्त बन जाते हैं और ऐसे कई सारे जो महामुनि है वो भी निरंतर भगवान की लीला को गाते रहते हैं लेकिन वो तृप्ति नहीं मिलती उनको। और ये जो कृष्ण कथा है उसको जो विषयी लोग सुनते हैं, जैसे हम जैसे सामान्य लोग जो है, हम लोग संसार में लगे हुए लोग हैं, वैसे लोग जब कृष्ण कथा को सुनते हैं तो उनका संसार बंधन कट जाता है, मतलब वो संसार में रहते हुए उनका चित्त कहाँ रहेगा, कहाँ रहेगा,
भगवान
भगवान की लीला में रहेगा। इसलिए कहा जाता है अधिक से अधिक भगवान की एक गुण रूप लीला आदि का श्रवण करना चाहिए, श्रवण सुनना चाहिए, क्योंकि संसार में रहते हुए भी अपने दिनचर्या का काम करते हैं कि हमारा चित्त कृष्ण में लग सकता है, इसका उपाय भगवान के गुण रूप लीला आदि का सुनना। और कौन लोग हैं जो इसको सुनना पसंद नहीं करते, कृष्ण कथा में कौन लोग हैं जो सुनना पसंद नहीं करते, वही लोग सुनना पसंद नहीं करते जो आत्मघाती लोग होते हैं, जो लोग जीवित रहते हैं मृत के समान है, मतलब जिसका जीने का कोई मतलब ही नहीं है। वास्तव में अगर किसी व्यक्ति को जीवित तभी कहा जाता है जो कृष्ण का भक्त है, अगर वो व्यक्ति कृष्ण का भक्ति नहीं कर रहा है तो वो शरीर आत्मा शरीर में रहते हुए कुछ खास काम तो नहीं कर रहा, तो मुर्दे के समान ही है। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से कि जो आत्मघाती लोग हैं वे लोग भगवान की चर्चा में सुनने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन मैं अपनी बात अगर मेरे अपने जीवन का वर्णन करूं तो मुझे तो इसको सुनने की बड़ी लालसा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से मेरा जन्म से संबंध है। मेरे जो दादा पांडव थे उनका युद्ध किसके साथ हुआ था जानते हैं? उनका युद्ध हुआ था महापराक्रमी भीष्म पितामह द्रोणाचार्य इन लोगों के साथ मेरे दादा पांडव का युद्ध हुआ था। और पांडवों की जो पांडव भीष्म पितामह द्रोणाचार्य उनके सामने मच्छर के समान थे। कुछ आचार्य कहते बहुत शक्ति बल बहुत छोटा था। एक तो कौरवों की विशाल सेना थी, ऊपर से जो पांडव लोग हैं उनकी सेना भी कम थी और उसमें जो रथी महारथी थे वो भी थोड़े कम थे। लेकिन उनके पास एक व्यक्ति था, भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे। लेकिन परीक्षित महाराज कहते हैं कि उन भगवान श्री कृष्ण की वजह से ही मेरे दादा पांडव ने भीष्म पितामह जैसे महारथियों को जो देवताओं से भी पराजित नहीं हो सकते, देवता लोग भी इंद्र भी इनको पराजित नहीं कर सकता, ऐसे लोगों को पराजित कर दिया। तो और उस युद्ध को ऐसे जीत लिया जैसे हम लोग रास्ते में चल रहे हैं तो रास्ते में अगर छोटा सा गड्ढा आ जाए उसको कैसे पार कर सकते हैं? उतनी आसान रास्ते में आए हैं गड्ढे को हम जितनी आसानी से पार करते हैं उतनी आसानी से भगवान कृष्ण की कृपा से क्या हुआ हमारे पांडव ने हमारे मेरे दादा पांडव ने इतना बड़ा युद्ध जीत लिया। मेरे दादा पांडव की बात छोड़ दीजिए, मेरी अपनी बात नहीं है। मैं अपनी माँ के गर्भ में था, मतलब परीक्षित महाराज करके सुखदेव गोस्वामी में अपनी माँ के गर्भ में था। तो उस समय अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मैं जल रहा था और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मुझे जला दिया था। और उस समय कुंती महारानी भगवान की स्तुति कर रही थी और मेरी माँ दौड़ते हुए भगवान से मेरे प्राणों की भिक्षा मांगने के लिए वहां पर आई। और इस समय भगवान ने सबके सामने मेरी रक्षा करने के लिए मेरी माँ के घर में प्रवेश किया। और मैंने एक घटना देखी कि मेरे चारों तरफ भगवान श्री कृष्ण घूम रहे और अपने गदा से भी रक्षा कर रहे हैं। अरे ये तो संकल्प से भी रक्षा कर सकते थे लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मेरी रक्षा की। वास्तव में इसी परीक्षित ने जब भगवान को देखा तब जो धार जब आए माँ के गर्भ से तो हर एक व्यक्ति को देखते थे क्या ये वही व्यक्ति है जिसने भी रक्षा की, क्या ये वही व्यक्ति है इसने रक्षा की, क्या ये वही व्यक्ति है, नहीं ये नहीं है। तो ये परीक्षण करते रहते थे इसलिए उनका नाम पड़ा परीक्षित। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की लीला है ऐसा लगता है कि साधारण मनुष्य है, बड़े बड़े लोग उनकी लीलाओं को नहीं समझ पाए। लेकिन ये मैं भगवान की इस ऐश्वर्य और माधुर्य से परिपूर्ण लीलाओं को सुनना चाहता हूँ तो कृपया करके मुझे बताइए कि भगवान श्री कृष्ण ने पहली बात तो ये बताएं मेरे जो पहला प्रश्न का उत्तर दीजिए किस तरह से बलराम जी रोहिणी के भी पुत्र है और देवकी के पुत्र है, इसका तो तुरंत समाधान कर दीजिए। और दूसरा ये बताए कि भगवान ने मथुरा में जन्म लिया तो गोकुल में क्यों चले गए, क्या कारण से गोकुल चले गए? और यदि वे गोकुल गए तो ब्रज में कितने समय तक रहे और उन्होंने वहां पर कौन कौन से लाए? और फिर उन्होंने अपने मामा कंस को क्यों मारा? अरे कोई अपने मामा को मारता है, कोई अपने मामा को क्यों मारेगा? लेकिन हम जाना चाहते कि ये तो भगवान है वो अपने मामा को क्यों मारेंगे, तो ये जानना हम चाहते हैं कि वो कारण बताएंगे। उसके बाद पूछते हैं कि हमने सुना है कि भगवान ने बहुत विवाह किए थे तो जनों की ग्रह गृहस्थी का वर्णन कीजिए। और इसके पश्चात ये जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ इसके व्यतिरिक्त भी आप और भी कुछ प्रश्न का उत्तर मुझे दीजिए क्योंकि ये तो मैंने अपने गति के हिसाब से मैंने आपको एक प्रश्न पूछा, लेकिन आप जो मैंने प्रश्न पूछे उसका भी उत्तर दीजिए और जो प्रश्न मैंने नहीं पूछे उसका भी उत्तर दीजिए। इस तरह से आप भगवान कृष्ण के संपूर्ण चरित्र का मुझे वर्णन कीजिए। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के इस प्रश्न से बहुत आनंदित हो जाते हैं, बहुत प्रसन्नचित हो जाते हैं और कहते हैं कि महाराज परीक्षित थोड़ा उसकी परीक्षा लेते हैं। देखिए परीक्षित आप चार दिन से भूखे प्यासे हैं, थोड़ा आप खा पी लीजिए फिर अपनी चर्चा करते हैं। तो महाराज परीक्षित कहते हैं नहीं प्रभु, खाने पीने की वजह से तो श्राप मिल गया, खाने पीने की लालच से तो श्राप मिल गया, ऋषि का अपराध कर दिया और श्राप मिल गया। और ये सब खाने पीने के चक्कर में नहीं पड़ना है, आप आपके श्रीमुख से जो कृष्ण कथा मुझे सुनने मिल रही है उससे मुझे उससे जो मेरी भूख और प्यास की जो कृष्णा है वो पूरी तरह से मिट चुकी है। मुझे मुझे अब किसी भी तरह से कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे जीवन के जो शेष तीन तीन दिन बचे हैं वो मैं भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनते सुनते छोड़ना चाहता हूँ, उसमें बिताना चाहता हूँ। तो अब मानस परीक्षित को शुद्ध गोस्वामी अपना उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। शुद्धदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि एक समय था, प्राचीन काल में एक समय था जब बहुत सारे राक्षसों ने पृथ्वी पर कब्जा कर लिया था, बहुत सारे राक्षसों ने पृथ्वी पर कब्जा किया था और राजा बनकर उस पर राज कर रहे थे। तो जितने सारे पाप कार्य करते थे वो सारे पाप कार्य वे लोग करते थे, इससे पृथ्वी जो थी माता जो थी पृथ्वी माँ इससे ग्रसित हो रही दुखी हो रही थी। तो पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया और गौ का रूप धारण करके माता पृथ्वी जो थी वो ब्रह्मा जी के पास चली गई ब्रह्मलोक में पीड़ा लेने, क्योंकि ब्रह्मा जी जो थे उस सृष्टि के क्या है पिता है। तो अपना प्रॉब्लम लेके प्रॉब्लम लेके ब्रह्मा जी के पास जाती है और ब्रह्मा जी बड़ी बड़े प्रेम से उसके सारे कष्ट को सुनते हैं और वो भी दुखी हो जाते हैं। तब वे शंकर और आदि इन देवताओं को लेकर वो जाते हैं क्षीर समुद्र पर, क्षीर सागर पर जाते हैं जहां पर भगवान विष्णु का निवास है। तो उस स्थान पर जाकर सारे वैसे भगवान विष्णु के दर्शन, भगवान विष्णु या भगवान श्री हरि के दर्शन सबको इतने सुलभ नहीं है। तो सिस्टम ऐसा है कि ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर, यदि उन लोगों के पास कोई समस्या होती है ब्रह्मा जी और सारे देवताओं के पास, तो वे लोग अपनी समस्या को लेकर क्षीर सागर पर जाते हैं और अपनी स्तुति करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। तो वहां पर ब्रह्मा जी को भगवान टेलीफोन पे ब्रह्मा जी से बात करते हैं और ब्रह्मा जी उनका मैसेज सारे देवताओं को देते हैं। तो ये टेलीफोन वहां पर वो टेलीफोन बुक लगा हुआ है, अर्थात जब सारे देवता लोग जब श्री सागर में पहुंचते हैं वहां पर लोग पुरुष सूक्त नामक एक स्तुति करते हैं और स्तुति के स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी को उपदेश करते हैं। जब ब्रह्मा जी ने भगवान का आदेश सुन लिया तब ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को कहा, हे देवताओं भगवान ने मुझे एक संदेश दिया है वो आप लोग ध्यान से सुन लेना। वो संदेश ये है कि भगवान हमारे सारी पीड़ाओं को सारे प्रॉब्लम को अच्छी तरह से जान रहे हैं, वे ईश्वरों के भी ईश्वर है, वो सारी समस्याओं को समझ रहे हैं क्या प्रॉब्लम है। और फिर उन्होंने कहा है कि वो शीघ्र यहाँ अवतार लेने वाले हैं। तो आप लोग भी यदि आप लोग भी भगवान की सहायता करने के लिए, भगवान और उनकी प्रियतमा श्रीमती राधा रानी की सहायता करने के लिए आप लोग सब लोग यदु कुल में जन्म ले लो, सब लोग यदु कुल में जन्म लो। तो सारे देवता यदु कुल में भर भर कर आने लगे, सारे यदु कुल में जन्म है, सब ने जन्म लिया। अब ये माता गौ माता इससे संतुष्ट होकर अपने वापस चलेंगे और सारे देवता लोग भी अपने आप वापस चलेंगे। तो यहाँ पर नीचे मथुरा में अभी हम लोग सब लोग मथुरा चलते हैं, जरा अपनी चेतना को तुरंत मथुरा ले जाइए। मथुरा में भगवान बलराम जी का पहले प्राकट्य होगा, बस मथुरा मंडल पर शूरसेन का राज्य था। शूरसेन जी जो थे और शूर मंडल और मथुरा मंडल इन दोनों पर राज्य करते थे और उनकी राजधानी थी मथुरा। तो तब से लेके सारे यदुवंश की जो राजधानी थी मथुरा थी और मथुरा आज वसुदेव जी ध्यान से सुना जिसको, वसुदेव जी जो थे वो शूरसेन के परिवार के व्यक्ति थे, फैमिली मेंबर शूरसेन के परिवार के। अब शूरसेन जी ने वसुदेव का विवाह किससे किया था, देवकी से। देवकी कौन थी, कंस की बहन, लेकिन देवकी देवक की पुत्री थी और देवक की देवक और कंस के पिता उग्रसेन दोनों क्या थे, भाई थे। उसी नाते से कंस क्या हुआ, देवकी का भाई हो गया। तो जब वसुदेव और देवकी का विवाह संपन्न हो रहा था तो कंस बड़ा आनंदित था, अपनी बहन का विवाह हो रहा है, वसुदेव जैसे महान व्यक्ति के साथ उसे जो सत्य परायण थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, उनका काम एकदम परफेक्ट था, एकदम सत्यवादी थे। तो ऐसे वसुदेव जी के साथ अपने देवकी का विवाह जानकर तो कंस बहुत प्रसन्न था। और कंस ने जब विवाह के लिए आया था तो कंस ने विचार किया कि क्यों नहीं मैं ही खुद देवकी का रथ हूं। तो देवकी का रथ थामने के लिए कंस उस रथ पर बैठा और देवकी को ले जाने लगा। उस समय देवताओं ने आकाशवाणी की, आकाशवाणी ने देवताओं ने ये कहा, अरे मूर्ख कंस, जैसा मूर्ख तो हमने आज तक नहीं देखा। कंस एकदम विस्मित हो गया, देवता की आकाशवाणी, आकाशवाणी देवता लोग करते हैं, देवता लोग आकाशवाणी करते हैं। अभी देवता लोग आकाशवाणी क्यों कर रहे थे? अभी जैसे कंस ने आकाशवाणी सुनी कि अरे मूर्ख कंस, जिसका आठवा गर्भ तेरा वध करेगा, जिसका आठवा जो पुत्र होगा वो तेरा वध करेगा। अब कंस ने तुरंत तलवार निकाले, देवकी को मारने के लिए वो उतावला हो गया, तुरंत तलवार निकाल दी। ये लोग ज्यादा विचार नहीं, असुर लोग से विचार नहीं करते। आज अगर समाज में देखेंगे तो असुरी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, विशेष करके जो मांस मछली मटन खाने वाले लोग हैं, उनमें इतनी असुर इतने तमोगुण भरा हुआ है, उनको मार काटने में कुछ देर नहीं लगती, तुरंत तलवार निकाल देंगे, तुरंत गोली मार देंगे, तुरंत ये कर देंगे। विशेष करके हमारे उस पार के जो लोग हैं, उनको इतना उनकी लड़ाई करने में इतनी रुचि है उन लोगों को कि मार काटने में कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरह से कंस तमोगुणी व्यक्ति था, कंस की जो संगति थी वो असुरों की संगति थी। तो कंस ने जैसे ही सुना कि देवकी का आठवा पुत्र मेरा वध करेगा, तुरंत उसने तलवार निकाली और ये तक नहीं देखा कि मेरी बहन है, इसका भी विवाह हो रहा है, इसका अब तक शरीर के मंगल चिन्ह भी नहीं उतरे, इसको तुरंत कंस मारने के उतारा हो गया। अब ये समझना चाहिए कि देवता लोगों ने ऐसा क्यों किया, देवताओं ने ऐसा क्यों किया जिससे कंस उत्तेजित हो गया। क्योंकि देवताओं को अपना काम करना था। देवता लोग क्या चाहते थे कि भगवान ने आने का वादा किया है, तो अगर ये जब तक कंस कुछ करेगा नहीं तब तक भगवान आएंगे नहीं जल्दी, तो हमें कुछ करना पड़ेगा जिससे कि कंस उत्तेजित हो जाए, क्रोधित हो जाए और कुछ करे तो भगवान जल्दी जल्दी आ जाए। तो उनको उकसाने के लिए देवता ये सब काम करते हैं। तो वसुदेव जी चिंतित हो गए। वसुदेव जी जब ये कंस ने देखा कि कोई अगर देखे कोई मेरी बीवी हो या कोई अपना घर का व्यक्ति हो जिसकी मृत्यु होने वाली हो या कोई मर रहा हो हॉस्पिटल में हो, तो हमारे उस सब दशा क्या हो जाती है, किसी तरह से इसको बचा लेना चाहिए, किसी तरह से। अगर वो हॉस्पिटल में है, मर रहा है, तो हम बोलते हॉस्पिटल में जितना पैसा लग जाए लगातार उसको बचा लो, बोलते है ना अक्सर पिक्चर में तो सुना होगा, डरा सुना होगा, पर जितना पैसा लगना लग जाए कोई बात नहीं, बच जाए, इस तरह से बच जाए। या फिर हमारा कोई अपना मित्र है, वो अगर कोई सुबह वो बीमार है तो हम लोग कुछ भी करेंगे उससे रक्षा करने का, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे या सबसे अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट उसको देंगे। तो उसी तरह से वसुदेव जी की विवाह हो गया था, तुरंत उसने देखा, उन्होंने देखा कि कंस उसको मारने के लिए उत्तेजित मारना चाहता है। तब वसुदेव जी ने उनको समझाना बता रहे थे कि देखो कंस, अरे कंस तुम्हारा जैसा प्रतापी राजा इस संसार में नहीं है, देखिए इसके ऐसा प्रतापी, तुम्हारी चर्चा तो देवता लोग भी करते हैं, तुम्हारी कीर्ति, वसुदेव जी कह रहे कि तुम्हारी कीर्ति सर्वत्र फैली हुई है, हे दीन बंधु कंस, अरे वो बेचारी तुम्हारी बहन है, उसका अब भी विवाह हुआ है, अरे उसके शरीर पर देखो उसका श्रृंगार तो उतरा नहीं है, तुम उसको मारने के लिए चले हो, अरे तुम्हारे जैसे दयालु और महान राजा कोई शोभा देता है, कभी शोभा नहीं देता। तो वसुदेव जी कहते हैं कि कंस तुम तो ज्ञानी व्यक्ति हो, तुमको ये जान लेना चाहिए कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होने वाली है, आज नहीं होगी तो 100 साल के बाद होगी, लेकिन मृत्यु तो होने वाली है किसी की, कोई भी हो, जिस जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृत्युश्च। तो जिसके जिसका जन्म हुआ है उसके साथ उसकी मृत्यु लिखी रहती है कि कब इसका मरना निश्चित है। तो कंस कह रहा है कि वसुदेव जी कंस से कहते हैं कि तुम मरने से क्यों डर रहे हो, मरना कौन सी, जिस तरह से हम इस शरीर के साथ जो कार्य करते हैं, जो कुछ कार्य करेंगे, तो उस कार्य के अनुसार हमें दूसरा शरीर की प्राप्ति होगी। अगर हम अच्छा कार्य करेंगे तो हमें अच्छा मनुष्य शरीर मिलेगा, अगर हम पशु जैसे कार्य करेंगे तो हमें पशु का शरीर मिलेगा। तो इस तरह से वसुदेव जी उसको समझा रहे थे कंस को, देखो कंस तुम इतने वीर योद्धा हो, तुम इतने बुद्धिमान हो, तुम इतने ग्रेट हो, कंस द ग्रेट। इस तरह से वसुदेव जी उसको समझा रहे थे ताकि किसी तरह से वो मान जाए कि और देवकी को ना मारे। उनका तो फिलहाल उनको तो ये था कि किसी तरह से देवकी को बचाना था। तो वसुदेव जी समझा रहे थे, आत्मा का सिद्धांत समझा दिया कि देखो तुम ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे कि तुम्हारा परलोक बिगड़ जाए, कि अगर आप इस अबला स्त्री का वध कर दोगे तो इसका जो पाप लगेगा तुम्हें, तो इसमें जो तुम्हारे इस समय तुम्हें पाप भुगतना ही पड़ेगा, मरने के बाद तुमको सजा मिलेगी, तुम ये सब कार्य मत करो। लेकिन कंस ये सब बातों से कंस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और तो इतना ही लाल पीला हो रहा था, उसको मारना ही था, जबकि उसने केश पकड़ लिए थे, उसने तलवार उठाते थे, उसको गर्दन उसको काटने की गर्दन से उसको बस वेट कर रहा था। उस समय वसुदेव जी ने सोचा, विचार किया, किसी ना किसी तरह से कंस को रोकना चाहिए, अगर अब मैं नहीं रोक पाया इसको, चाहे जो कुछ मुझे बोलना पड़े, जो कुछ करना पड़े, मैं करूँ, लेकिन इस तरह किसी को किस तरह से रोकूं। तो फिर वसुदेव जी ने एक बात चाल चली, वसुदेव जी ने कहा, कंस तुम्हें तुम्हारी बहन से भय नहीं है ना, आकाश में ने क्या कहा था, तुम्हें भय किससे है, इसके पुत्रों से, ठीक है, तो मैं तुमको आज ही वादा करता हूँ कि इसके जितने पुत्र होंगे तुम्हारे पास लाके सौंप दूंगा। जब कंस ने ये सुना कि वसुदेव जैसा सत्यवादी व्यक्ति ये कह रहा कि मैं पुत्र छोड़ तुम्हें लाकर सौंप दूंगा, तब जाके कंस शांत हुआ, क्योंकि उसको वसुदेव जी को बचपन वसुदेव जी को अच्छे से जानता था, वो जानता था कि वसुदेव जी सत्यवादी व्यक्ति है, वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये ऐसे व्यक्तियों में से ये थे। तो उन्होंने कंस से वसुदेव जी की बात पर विश्वास कर लिया और देवकी को छोड़ दिया, ठीक है अब तुम दोनों चले जाओ, तो समय बीता और भगवान देवकी के गर्भ से हर साल एक एक पुत्र उत्पन्न हो रहा, और प्रथम जो पुत्र था कीर्तिमान, तो कीर्तिमान को वसुदेव जी बड़े कष्ट था देवकी को, कैसे अपने पुत्र को कंस को, क्योंकि उसको मालूम था कि कंस उसको मारने वाला है। जैसे हम आज समाज में ऐसी स्थिति है कि गौवे कटी जा रही है, हम लोग चाहते हैं कि गौवे ना कटे, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो कसाई लोग विशेषकर मुसलमान लोग हैं, वे लोग गौवों को चुरा चुरा कर बेचते कसाई खाने में, और उस गौवों को काटा जाता है। तो कितनी दर्दनाक और कितनी पीड़ाजनक बात है कि हम आज गौ जिसका हम लोग दूध पीते हैं, वे लोग भी पीते हैं, लेकिन उन लोग इतने इग्नोरेंस में है कि वो लोग गौवों को काट देते हैं। तो देवकी जान रही थी, समझ रही थी, पीड़ा के समय समझ रही थी कि निश्चित रूप से ये कंस इसको मार डालेगा, इसलिए वो देना नहीं चाहते थे। लेकिन वसुदेव जी को अपना वचन निभाना था, वसुदेव जी सत्यवादी व्यक्ति थे, उनको अपना वचन निभाना था कि क्या किसी तरह से मेरा वचन भंग नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कंस को लिया वचन पूरा करने के लिए, किसी तरह से देवकी को समझा बुझा कर अपना पुत्र ले लिया और चले गए कंस के पास। और जब कंस के पास पहुंचे तो कंस इतना खुश हो गया, वाह वसुदेव जी वाह, मैंने आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा है जो अपने वचन पर इतना सत्य अपने वचनों पर इतना ठहरे। तो कंस इतना प्रसन्न हुआ कि जाइए वसुदेव जी जाइए, आप इस नन्हे से बालक को ले जाइए, मुझे इसको मारने की कोई रुचि नहीं है। तो वसुदेव जी तो खुश हो गए कि वाह कंस इतना दयालु कैसे हो गया। तो और कहा कि जाइए वसुदेव जी जाइए, इसको ले जाइए, मुझे तो 8 पुत्र इसके बारे में, अभी से क्यों मारना चाहूंगा। तो कंस ने जाने दिया, लेकिन वसुदेव जी को विश्वास नहीं हो, वसुदेव जी अपने घर वापस लौट रहे थे, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा, उनको पता था ये नीच लोग, कंस नीच व्यक्ति, अभी कर कुछ रहा है फिर दोबारा कुछ और करेगा। तो कंस की नीचता का उनको पता था, और उनको बिल्कुल लो मात्र में विश्वास नहीं था कि ये इस तरह की उसकी जो दयालुता है उसके लो मात्र विश्वास नहीं था। तो कंस को मिलने के लिए इस ग्रेस नारद जी आते हैं। तब ये जब घटना हो गई, जब कंस ने पहले पुत्र को छोड़ दिया, तो देवताओं में टेंशन भरा हो गया कि बाप रे, कंस ने पहले पुत्र को छोड़ दिया, अब भगवान को आने के लिए और टाइम लगेगा। पता नहीं भगवान तो आठवें में आने वाले, पता नहीं भगवान कितने 8 साल, अगर ये अगर नहीं मरा, पता नहीं भगवान आठवें पुत्र बनकर आने वाले, तो कितना समय लगेगा उनको। तो देवताओं ने कहा कि नारद जी आप जाके कुछ करके आइए। तो देवताओं ने नारद जी को रिक्वेस्ट किया कि नारद जी आप प्लीज जाइए और कुछ ऐसा कीजिए कि जैसे जिससे कि कंस एक पुत्र को मारना चालू करे। तो नारद जी मथुरा पहुंचते हैं और वहां पर कंस को मिलते हैं। तो कंस को कहता है, मूर्ख कंस, तू इतना मूर्ख है, मुझे समझ में आया, इतना मूर्ख होगा तो मुझे इतना विश्वास नहीं होगा, इतना मूर्ख है। तुझे देवताओं ने आकाशवाणी में कहा कि इस देवकी का 8वां गर्भ वध करेगा तेरा, फिर भी तू मूर्खों जैसे इस बच्चे को छोड़ दिया। तुझे अक्ल है कि नहीं? तुझे अपने प्राणों की पड़ी है कि नहीं? अरे तू जानता है क्या जानता है ये सारे यदुवंश कौन है, ये सारे जो भोज वंशी है, दुष्टि वंशी है, ये सब लोग कौन है तू जानता है? ये सारे देवता है, सब के सब देवता है। देवताओं में बहुत बड़ा देवता ने बहुत बड़ा मिशन लिया है, मिशन कंस, उन लोगों का मिशन है मिशन कंस की, कंस का वध करना है, क्योंकि पृथ्वी देवी पहुंची थी ब्रह्मा जी के लोक में और वहां पर पृथ्वी जी ने कहा कि तुम्हारे और तुम्हारे जो असुर कुल के जो राजा है उन लोगों ने पृथ्वी को बहुत परेशान किया है, तो पृथ्वी देवी तुम्हारी कंप्लेंट लेकर पहुंची थी ऊपर। तब वहां पर भगवान के आदेश पर एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है और सब लोग अवतार लेकर तुम्हारे यदुकुल में आए हुए हैं। ये छोड़ो, आसपास के तुम्हारे परिवार वाले तो देवता है ही, तुम्हारे साथ काम करने वाले लोग भी देवता है, बोलो। और तुम, अरे वसुदेव कौन है जानते हो? एकदम निकटतम है विष्णु का। ये नंद महाराज कौन है? एकदम निकटतम है। इन सब पर विश्वास मत करो मूर्ख। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है, अगर तुझे अपना प्राण प्यारा है, तो किसी तुरंत उस बच्चों को बुला और उसका वध कर दे। लो अब नारद मुनि जी इस तरह से उसको उपदेश कर रहे हैं। तो कंस एकदम मिशन कंस, अरे देवताओं का ये देवताओं का जब ये प्लान जब उसने नारद जी के मुख से सुना, तब कंस को विश्वास हो गया कि बाप रे बाप, इतनी बड़ी सेटिंग मुझे मारने के लिए, इतनी बड़ी सेटिंग, अब मैं इस यदुकुल के देवता को नहीं छोड़ूंगा। तब कंस ने क्या किया, ये जो देवता लोग थे, कौन कौन देवता लोग थे जो उनके जो अपने उनके जो वृष्णि वंशी है या बोध वंशी है, यदुवंशी है, इन सबको कंस ने अपने राक्षसों की सहायता से मारना चालू कर दिया, परेशान करना चालू कर दिया। अब कंस अलर्ट पे कर, तुरंत कंस ने आदेश दे दिया वसुदेव देवकी को अरेस्ट किया जाए। तो तुरंत वसुदेव देवकी को अरेस्ट किया गया और पहला पुत्र उनका मार दिया गया। इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6 पुत्र को कंस ने मार दिया। अब सातवा पुत्र आने वाला है, सातवा गर्भ है। अब हमें थोड़ा विचार करना चाहिए कि कंस की जो संगति थी उस संगति में कौन कौन है। कंस की संगति में त्रिणावत, अघासुर, बकासुर, बानासुर, जितने सारे सुर है सब कंस के निकटतम मित्र, सब कंस के एकदम बेस्ट फ्रेंड्स, और इन अपने इस निकटतम मित्रों को कंस ने अपने मंत्रिमंडल में रख दिया था। तो जब वसुदेव जी को इसने छोड़, जब नारद जी उपदेश करके चले गए, तो कंस ने डर के मारे ये सारी चीज उसको बता दी, इसने अपने मंत्रियों को बता दी और चल रहे कि आप लोगों से मैं सलाह लेना चाहता हूँ। तो कंस किसे सलाह, मंत्रियों से सलाह लेना चाहता है कि अब क्या किया जाए। तब तुरंत सबने एक आवाज में कहा, मार डालो तुरंत, वसुदेव देवकी को ही मार डालो, वसुदेव देवकी को ही मार डालो, कहानी खत्म करो। तब कांस्य बोला नहीं वसुदेव देवकी को नहीं मारना है, उसके उसके बेटों को मारना है, तो मुझे इतना बड़ा अपयश नहीं, इतना बड़ा अपकीर्ति और इतना बड़ा अपयश मुझे नहीं चाहिए, मुझे वसुदेव देवकी को नहीं मारना, अपनी बहन को नहीं मारना है। तब जरासन ने अपनी जो बेटियां थी उसको कंस को सौंप दिया, तो जरासन का भी उसको पूरा सपोर्ट था। तो इस तरह से कंस एक बहुत पावरफुल शक्तिशाली शक्तिशाली राजा बन गया था, पर असुरों का राजा था, तो जो साधु स्वभाव जो भक्त लोग है या फिर जो यदुवंशी है उन लोगों को बहुत परेशान करता था। ये जो परेशानी देखकर भगवान ने एक बार योग माया को बुलाया अपने पास, इसको योग माया को बुलाया और योग माया को आपने कहा कि योग माया कंस के अत्याचार के कारण मेरे जो भक्त है, जो पृथ्वी पर जो मेरे भक्त है वो पीड़ित है, बहुत पीड़ित है, और उनका मेरे अलावा कोई नहीं है, उनका एकमात्र कौन है, मैं ही उनका एकमात्र है, सब कुछ होगा, तो तुम कुछ के बाद देवकी के गर्भ में मेरा अंश बलराम या अनंत प्रकट होने वाला है। तुम्हारा ये कार्य है कि तुम उस मेरे अंश को देवकी के गर्भ से स्थानांतरित कर दो रोहिणी के गर्भ में। रोहिणी कहाँ रहती है, वृंदावन ब्रज में रहती है नंद बाबा के साथ में। यद्यपि रोहिणी जो है ऐसा भगवान उसको, यद्यपि रोहिणी जो है वो मेरे पिता वसुदेव जी की पत्नी है, लेकिन कंस के भय के कारण उनकी बहुत सारी पत्नियां अन्यत्र रहती हैं और उसमें से एक नंद बाबा के पास रहती है। तो तुम जाओ और वहां पर भगवान बलराम जी को मेरे अंश को ट्रांसफर कर देना, स्थानांतरित कर देना, और इसी के कारण तुम्हारा जो नाम होगा, जो उनका उनका जो नाम होगा, उनका नाम होगा संकर्षण। इसका बलराम जी का दाऊ जी का एक नाम होगा संकर्षण। तो इस तरह से भगवान ने उसको आदेश दिया और कहा कि तुम्हारे इस कार्य के लिए, तुम्हारे इस जो मेरी सेवा करे, मेरा आज्ञा पालन करे, इस कारण के लिए मेरा तुम्हें आशीर्वाद है कि संसार में जो लोग मेरी भक्ति नहीं करते वे लोग तुम्हारी भक्ति करेंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे, और तुम्हारे कई सारे नाम होंगे, तुम्हारे दुर्गा भद्रकाली विजया वैष्णवी कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्या माया नारायणी ईशानी शारदा अंबिका। भगवान ने दीक्षा दे दी, बीड़ा खवा दी और दीक्षा दे दी भगवान ने, क्या तुम्हारा आज से आध्यात्मिक नाम, इतने सारे नाम दे दिए भगवान, और कहा कि जो लोग मेरी भक्ति नहीं करते वे लोग तुम्हारे जुरिडिक्शन तुम्हारे अंदर रहेंगे। और बलराम जी ट्रांसफर हो गए, कभी इस पर बहुत सारे आचार्यों की अपने अपने मत है, तो वल्लभाचार्य भी एक आचार्य है, वो अपनी टीका में लिखते हैं कि क्यों भगवान ने बलराम जी को ट्रांसफर कराया, अगर उन करने की आवश्यकता क्या थी, वही जन्म हो जाता, जेल में जन्म हो जाता, जैसे 6 का जन्म 7 का जन्म हो जाता। लेकिन वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि यदि वही जन्म हो जाता और कंस जिस तरह 6 बच्चों को मार दिया उस तरह से 7 को मारने आता, तो ये बलराम जी है, सुनेंगे तो है नहीं, कंस आएगा मारने के लिए, उसको मारने के लिए जाएंगे, उसको छुएंगे तो बलराम जी एक तमाचा मारते कंस भी मर जाएगा, अगर कंस मर गया तो मेरा आनंद और डिले हो जाएगा। तो उसके लिए उस वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि इस कार्य के लिए भगवान ने योग माया को बुला के पहले ट्रांसफर करा दिया भाई, ताकि मैं आ जाऊं, ये मेरा कार्य है, दाऊ जी न करे। फिर कुछ आचार्य ये भी अपनी टीका में कहते हैं, ये भी अपनी टीका में कहते हैं कि बलराम जी विस्मरण हो रहा है, तो ये इस तरह से ट्रांसफर हो गया, भगवान ट्रांसफर हो गया और अब भगवान उनके
अंश के रूप में वहां पर आ गए।
बलराम जी की थोड़ी हम लोग भगवान के बलराम जी के गुणों की थोड़ी और चर्चा करना चाहता है कि बलराम जी है कौन। तो ये बलराम जी और कृष्ण में वैसे तो कोई खास अंतर है। कृष्ण जो है वो अवतारी है और बलराम जी जो है वो प्रथम भगवान के अवतार है। और बहुत सारे स्थानों में बलराम जी कृष्ण मतलब भगवान की सेवा करते हैं कि नहीं उनका जन्म हुआ। यद्यपि वो थोड़े बड़े हैं, बड़े भाई के रूप में आए, लेकिन बलराम जी हमेशा कृष्ण की सेवा हमेशा
कृष्ण की सेवा करते हैं।
बलराम जी से ही सारा सृष्टि कार्य संपन्न होता है। बलराम जी से ही गर्भ दक्षा विष्णु शिव दक्षा विष्णु जितने भी सृष्टि कार्य है बलराम जी के द्वारा मतलब ऑफिस वर्क सारा बलराम जी करते हैं। घर का काम मतलब भगवान कृष्ण अपनी लीला में व्यस्त रहते हैं तो भगवान कृष्ण सब टेंशन नहीं लेते। भगवान कृष्ण अपने गोलोक वृंदावन में अपनी लीला करते रहते हैं और बलराम जी ये सारा सृष्टि कार्य करते रहते हैं। तो एक बार की ऐसी घटना है कि काफी सारे लीलाओं में ऐसा देखा कि कृष्ण के साथ बलराम जी नहीं जाते थे। विशेष करके काल्यदमन लीला में बलराम जी ने उसे जाने को मना कर दिया कि हम नहीं जाए, आप चले जाए। उसके दो कारण थे। एक कारण यह था कि उस दिन बलराम जी का बर्थडे था। तो बर्थडे था तो भगवान ने कहा, तो बलराम जी ने कहा कि नहीं, आज मैं अपनी मां के साथ रहूंगा, तो मैं तो तुम अकेले चले जाना। ये तो एक कारण हो गया। दूसरा कारण यह था कि कालिया जो था उनका सगा भाई था।
अरे
कालिया सगा भाई कैसे हो सकता है? भगवान बलराम जी का एक नाम अनंत है, तो कश्यप जी की एक पत्नी का नाम कद्रु है और कद्रु सारे सर्गों की माता है। कद्रु ने 1000 सर्गों को जन्म दिया था और उन सर्गों में प्रथम जो सर्ग के रूप में जन्म लिया वो थे अनंत शेष। भगवान अनंत बलराम जी ही अनंत नाम के अनंत शेष के रूप में अनंत शेष के रूप में जन्म लिए थे कद्रु के गर्भ से और उन्हीं के गर्भ से काल्य का जन्म हुआ था। आप समझ रहे हैं इस बात को कि कद्रु से अनंत शेष भी जन्म लिए थे और कद्रु से काल्य भी जन्म लिया था। तो काल्य और अनंत शेष हो गए भाई भाई, सगे भाई हो गए, साथ में खेले कूदे, क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, सब कबड्डी खेले, सब साथ में किए उन लोगों ने बचपन से। तो अब काल्य वृंदावन में आया हुआ है और भगवान उसको वध करने चाहते थे, लेकिन बलराम जी नहीं जाना चाहते थे, इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे। क्योंकि बलराम जी को कालिया देख लेता तो बोलता था, अरे बड़े भाई तुम्हारे होते कृष्ण से मार रहा है, ऐसा कैसे होगा। तो भगवान जी उस लीला में डिस्टर्ब ना हो इसलिए भगवान बलराम जी उसे नहीं गए और बलराम जी के हृदय की बात को जानकर भगवान ने कालिया को मारा नहीं, कालिया का केवल दमन कर दिया, उसको भगा दिया वहां से। तो ये एक लीला है। जब गोवर्धन पर्वत उठाना चाहा तो सारा क्रेडिट बलराम जी ने कृष्ण को ही दिया। इंद्र ने 7 दिन और 7 रात तक वर्षा की थी तो कृष्ण ने 7 दिन और 7 रात तक अपने लेफ्ट दाएं हाथ की उंगली पर भगवान ने गोवर्धन को धारण किया। तो बलराम जी ने कुछ नहीं किया, चाहते तो वो भी अपना हाथ लगा सकते, वो भी अपनी उंगली लगा सकते, लेकिन उन्होंने उस लीला में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। सारा यश कृष्ण को जाते थे तो सारा यश कृष्ण में चला गया। एक बार जब काफी द्वारका की घटना है कि अर्जुन भगवान कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन का जो विवाह सुभद्रा के साथ हो जाए। सुभद्रा इन दोनों की बहन, कृष्ण और बलराम की जो बहन है सुभद्रा, और इसका जन्म हुआ था देवकी के गर्भ से ही हुआ था। तो सुभद्रा भगवान कृष्ण बलराम की बहुत बहन थी और बहुत प्रिय थी, और कृष्ण के लिए अर्जुन बहुत प्रिय थे। तो कृष्ण की इच्छा थी कि अर्जुन का विवाह सुभद्रा से हो जाए और भगवान दाऊ जी चाहते थे कि उसका विवाह दुर्योधन के साथ हो जाए, दुर्योधन के किसी उसके बेटे के साथ हो जाए। अब उसका कारण ये था कि जो दुर्योधन था उसने कौरव और पांडव ने दोनों ने जो ट्रेनिंग ली थी वो द्रोणाचार्य से ली थी, लेकिन स्पेशलाइज ट्रेनिंग जो ली थी
गदा डिप्लोमा इन गदा युद्ध,
ये जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग थी उन्होंने बलराम जी से ली थी। तो बलराम जी उनके गदा गदा के टीचर, जो गदा युद्ध के एकदम शिक्षक थे, मास्टर थे, उन्होंने उन्होंने सिखाया था, एक्सपर्ट बना दिया दुर्योधन को, एकदम एक्सपर्ट। और जब गुरु शिष्य का संबंध है तो निकटतम संबंध है, तो स्वाभाविक रूप से बलराम जी का जो प्रेम दुर्योधन पे थोड़ा ज्यादा था। तो यहाँ पर जब खबर आई कि अर्जुन ने सुभद्रा को किडनैप कर लिया, तब दाऊ जी का दिमाग खराब। दाऊ जी सीधा अपना अपना हल लिए और बोले कि आज ही अर्जुन को मार डालूंगा मैं, फिर मारने का दौड़ पड़े। तब भगवान उनके चरणों में गिरे, बोले प्रभु जरा ठीक से न्यूज सुना करो, चैनल चेंज करो और पता लगाओ कि दूसरे चैनल में क्या करे, जरा सुनो। हरण अर्जुन ने नहीं किया, हरण सुभद्रा ने अर्जुन का किया था। सैनिकों को बुलाओ जिन्होंने देखा था, बोलो कि रथ कौन चला रहा था, रथ को सुभद्रा चला रहे थे। अच्छा तो ये सुभद्रा ने अर्जुन, ये तो अर्जुन हरण हुआ है, सुभद्रा हरण का हुआ है। तो फिर दाऊ जी ने कहा ठीक है कृष्ण, तुम्हारी इच्छा करा लो। एक बार ऐसा हुआ था कि दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण से युद्ध में सहायता मांगने के लिए गए थे, और भगवान श्री कृष्ण लेटे हुए थे, सो रहे थे। तो दुर्योधन आके सिराने लेट गया और अर्जुन चरण कमलों में बैठ गया। तो जैसे ही भगवान उठे तो भगवान ने पहले अर्जुन को देखा, तो अर्जुन को देखने के बाद भगवान ने कहा, अरे दुर्योधन का मैं भी आया हूँ कृष्ण। बोला अच्छा तुम भी आए हो, वेलकम वेलकम, तो क्या प्रयोजन से आप दोनों यहाँ पर आए। तो दुर्योधन का देखो कृष्ण, अभी तो युद्ध की ठन गई है, कौरव और पांडव युद्ध तो होना निश्चित है, तो अभी हम आपसे सहायता मांगने के लिए आए हैं, क्योंकि दोनों परिवार से आपका संबंध है। तो कृष्ण बोले देखो दुर्योधन, मांगने का अधिकार पहले तो अर्जुन का, क्योंकि वो तुमसे छोटा है, और दूसरी बार मैंने भी अर्जुन को देखा है, पहले मैंने अर्जुन को देखा, तुमको बाद में देखा है, तो पहले उसको मांगने दो। बोले ठीक है। तो अर्जुन एक तुम्हारे पास दो ऑप्शन है कि एक तो तुम, मैं हूं नियत था, और दूसरा है मेरी नारायणी सेना, तुमको क्या चाहिए। तो बोले नारायणी सेना में लोग क्या कर लेंगे, मुझे तो नारायण चाहिए, मुझे तो आप चाहिए, आप रहेंगे तो मैं इंद्र और शिवजी को हरा सकता हूं। तो अर्जुन ने इसको चूज कर लिया, और उन्होंने दुर्योधन ने नारायणी सेना लेकर जाने जाने चले चल पड़े। लेकिन जाने से पहले दोनों फिर दाऊ जी के पास गए, बलराम जी के पास गए, और दाऊ जी से रिक्वेस्ट किया कि प्रभु भगवान कृष्ण ने तो अर्जुन का साइड ले लिया है। दुर्योधन ने बोला दाऊ जी आप हमारे साइड हो जाए, भगवान कृष्ण उनकी तरफ रहेंगे तो दाऊ आप हमारे तरफ हो जाएंगे। तो दुर्योधन के ये कहने पर दाऊ जी ने पूछा अर्जुन को, अच्छा कृष्ण तुम्हारे सारथी बनने वाले हैं। हाँ अभी यही बात प्रॉमिस किया है कि वो मेरे सारथी बनेंगे। अच्छा तो दुर्योधन मैं ना ये सब जानना नहीं पड़ना चाह रहा, ठीक है, देखो कृष्ण ने इसका सारथी बनने का निर्णय कर लिया है, तो मैं फिर यात्रा में चला जाना चाहता हूँ। क्या सब क्या है, पारिवारिक युद्ध में झगड़ा अच्छा है, ठीक है, उस शिशुपाल आदि के साथ युद्ध होना वो बात अलग है, लेकिन ये सब अपने परिवार का युद्ध है, तो इन लोगों के साथ ना मेरे को अच्छा ही रहता, तुम भी अपने लिए भी अपना है, ऊपर से कृष्ण वहां पर रहेगा तो युद्ध करने में मजा नहीं आएगा, तो मैं तीर्थ यात्रा में जाता हूँ, तो मैं आऊंगा युद्ध खत्म होने के बाद आऊंगा। तो बलराम जी तीर्थ यात्रा के लिए चले, तो बलराम जी ने युद्ध पार्टिसिपेट नहीं किया। अगर कर लेते तो युद्ध का मजा ही कुछ और होता, लेकिन भगवान वो भी होने नहीं देते। भगवान का ये था कि चाहे जो कुछ हो जाए मैं अर्जुन को नहीं छोड़ू, मैं अपने भक्त को नहीं छोड़ सकता, चाहे जो कुछ हो जाए, भगवान भक्त अच्छा है, किसी भी स्थिति में अपने भक्त को नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो ये बलराम जी जानते थे, और इसमें बलराम जी ने युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया, बलराम जी चले गए। फिर जब युद्ध खत्म हुआ, अंत में दाऊ जी और वहां पर जब अंत में युद्ध हो रहा था, उसमें दुर्योधन और भीमसेन के बीच में युद्ध हो रहा था, बहुत घमासान युद्ध हो रहा था, बोलने के बीच में बहुत घमासान, बहुत दिनों से युद्ध चल रहा था, कोई नहीं हार रहा था, कोई जीत नहीं रहा था, तो गंगा सार दो में तो गदा 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 युद्ध जो था वो नियम के अनुसार हो रहा था कि कमर के नीचे जान भर कोई बात न करे। तो भगवान ने इशारा कर दिया भीम को मार उसे जान पे मार दो, कहानी खत्म हो गई। बहुत समय से टाइम पास हो रहा ये सब 2020 का जमाना है, तुम कैच मैच का खेलते हो, मार दो इसको। तो जैसे ही भीम ने इशारा भगवान ने इशारा था, फिर भीम ने सीधा जान पर मारना शुरू कर दिया। और उसी समय दाऊ जी आ गए। अब दाऊ जी को तो युद्ध से कोई मतलब नहीं था, युद्ध में क्या क्या हुआ है सब कुछ उनको मतलब नहीं था, कितने सारे नियम टूटे उनको कुछ मतलब नहीं। अचानक से जब ये घटना हो रही थी तब दाऊ जी आ गए और दाऊ जी ने देखा कि भीम गदा युद्ध का जो नियम उसको तोड़ रहा है। तो दाऊ जी ने अपना हाथ भीम तेरी अब तुझे देखता तो मेरे साथ युद्ध कर, तुझे नियम को अभी पता नहीं है, तू पहले मुझसे लड़, और मुझसे अगर बच गया तो तू भीम से दुर्योधन से लड़ गया। तो दाऊ जी गुस्से में दाऊ जी भीम को मारने के लिए टूट पड़े। तो भगवान बोले अच्छा आपको युद्ध से मतलब नहीं है, रख के ड्रामा करने आ गए, आप तीर्थ यात्रा करने जाते हो, तीर्थ यात्रा में जाके साधु का मत करते हैं, सब मुझे खबर मिली है। आप गए थे नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य में चल रही थी कथा, रोमहर्षण जी कथा कर रहे थे और वहां पर आप आए तो खड़े नहीं हुए, तो आपने घास के दिल्ली से वध कर दिया, तो आप यहाँ पर तो वध करते हो, यहाँ तो आप वध नहीं करते, वहां पर जाकर साधु का वध करते हो। दाऊ ये सब ड्रामा में मत पढ़ो, आप यहाँ से निकल जाओ, या जब आप स्टार्टिंग में पार्टिसिपेट नहीं हो तो अभी आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, तो ये आप चले जाइए यहाँ से, डिस्टर्ब मत कीजिए। तो दाऊ ने यार निकल गया, कुछ बोली के पाए साधु का वध कर दिया, सारा टॉन्ट इतना बड़ा टॉन्ट मार दिया। तो अब दाऊ जी शर्म के मारे चले गए। वैसे दाऊ जी भगवान की सब लीला है, ठीक है, भगवान कृष्ण की सब लीला है कि दाऊ भगवान बलराम कोई साधारण बद्ध जीव नहीं है, साक्षात कृष्ण ही है, बस कलर अलग है और उनका कार्य अलग है। तो इस तरह से तो दाऊ जी एक बार ऐसा हुआ कि द्वारका में जो रुक्मिणी साम जिसके पुत्र को स्मरण नहीं हो रहा है, लेकिन साम का विवाह लक्ष्मण के साथ, लक्ष्मणा उनकी बेटी थी, लक्ष्मणा दुर्योधन की बेटी थी, साम कृष्ण के बेटे थे। तो साम और लक्ष्मणा का विवाह होना तय हो गया था। तो जब विवाह हो गया तय हो गया था तब तय नहीं हुआ था, मतलब उनको एक दूसरे को पसंद कर लिए थे। तब जब दुर्योधन को ये बात पता चली तो दुर्योधन ने साम को किडनैप कर लिया। तो सामने युद्ध करके बहुत अपना बल पौरुष सब दिखाया, लेकिन किसी तरह से दुर्योधन की सेना ने साम को पकड़ लिया, दुर्योधन की सेना ने साम को पकड़ लिया। अब ये बहुत समय बीत गया और लेकिन साम का पता नहीं चल रहा, तो सारे द्वारका में सब चिंतित थे। तो वहां पर नारद जी ने आके सबको बता दिया कि साम जो है वो अरेस्ट किया है दुर्योधन ने, कौरव ने उसको अरेस्ट करके रखा हुआ। तब भगवान पूरे सब वहां पर सभा हो गई और जो महाराज उग्रसेन है उन्होंने चर्चा चल रही थी कि यार इस कौरवों के साथ तो हमारा बहुत अच्छा संबंध है, तो फिर भी उन लोगों ने इस तरह से हरकत क्यों की, इन्फॉर्म तक थी कि हम लोगों ने। तो उन्होंने दाऊ जी को भेजा कि देखिए हमें युद्ध करना है नहीं, तो दाऊ जी आप चले जाओ, दुर्योधन आपका डिसाइपल है तो अपने आप गुरु है, उनकी तरफ जाएंगे तो समझा बुझा कर मैटर सुलटा देना, पुलिस स्टेशन तक मत जाना, मैटर भाग के बाद ही सेटल कर दो। तो दाऊ जी वहां पर जाते हैं और दाऊ और उद्धव जाते हैं। तो उद्धव जी जाते हैं और संदेशा देते हैं कि दाऊ बलराम जी आए हुए हैं, तो कृपा करके आप लोग चलिए, उनका स्वागत सत्कार कीजिए। तो दुर्योधन का क्या उद्देश्य आया है, तो उन्होंने कहा कि साम को ले जाने आए हैं, साम और लक्ष्मणा, ऐसा कहा कि साम और लक्ष्मणा दोनों को ले जाने आए हैं। तो दुर्योधन ने क्रोध के मारे बोला दाऊ जी को बोलना दिमाग खराब है तुम लोगों का, तो द्वार समुद्र के बीच में थोड़ा सा शहर बसा लिया, तुम लोग सारे पृथ्वी के राजा बन गए, तुम लोग की अवकाश है, तुम लोग दाऊ जी को बोलो कि तुम लोग जाओ और ब्रज में जाके गौएं चराओ, ठीक है, ये सब हथियार विद्या लेके क्षत्रिय ऐसा स्टाइल मारने की आवश्यकता नहीं है,
तो दाऊ जी को इस तरह से गाली गलौज देते हैं, उद्धव जी ने, उद्धव जी आए और बोले दाऊ घमंड हो गया इनको।
दाऊ जी ने सब सुन लिया, दाऊ जी ने कहा अच्छी बात, दाऊ जी ने अपना हल निकाला और सारा का सारा हस्तिनापुर शहर को, हस्तिनापुर जो नगर था उसको अपने हल से एक एक हन मारा और सारे हस्तिनापुर को ड्रैग करते हुए खींचते हुए गंगा जी बहाने लग गए। बोले कि ना रहेगा हस्तिनापुर, ना रहेगा दुर्योधन, ना रहेगा धृतराष्ट्र, कहानी खत्म। तो वो अब दाऊ जी ने अपना हल निकाल के पूरा का पूरा हस्तिनापुर जो क्या बोलते हैं हस्तिनापुर जो शहर था, जो सिटी था, उसी को गंगा जी में बहाने लग गए। तो जब दाऊ जी ये कर रहे थे खींचते हुए सारे शहर को गंगा जी में, गंगा जी में ले जा रहे थे, तो उस तरह सब जगह भूकंप हो गया, सब जमीन हिल रही थी ना, जमीन हिल रही थी सब जगह, हड़कंप मच गया एकदम। तो सब लोग ने बोला जाओ जाओ दुर्योधन, जाओ जाओ, दाऊ नाराज हो गए हैं। अरे मूर्ख जानता है दाऊ कौन है, विश्वामित्र बोल पड़े, विदुर जी बोल पड़े, बोले मूर्ख इस समय तो हमारी बात मान, ऐसे तो हमारी बात मानता नहीं, दाऊ भगवान है, साक्षात सुप्रीम पर्सनैलिटी है, जाके नहीं तो हम कुछ सब नहीं बचेंगे। तब दुर्योधन लक्ष्मण और सब शाम को लेके दाऊ जी के पास जाते हैं, माफी मांगते हैं और सब मैटर को सॉल्व करते हैं,
शादी
कराते हैं। तो इस तरह से दाऊ का यह स्वभाव बलराम जी का। अब जरा लक्ष्मण जी के स्वभाव के बारे में थोड़ा समझ लीजिए, लक्ष्मण जी क्या है, लक्ष्मण जी भी बलराम ही है। जब श्री राम और सीता का जब विवाह हो गया था, विवाह संपन्न हो गया था, उस समय बाबा परशुराम जी आ गए थे। परशुराम जी भगवान के सत्य में शवसार है, लेकिन उनको भगवान श्री राम के बारे में समझ नहीं रहे कि वो श्री राम सुप्रीम पर्सनैलिटी है, भगवान है। तो परशुराम जी वहां पर आ गए, उन्होंने सुना और वहां पर आते ही सभा में अनाउंस कर दिया कि किसकी हिम्मत हो गई कि शिव जी के धनुष को तोड़ने की, और सुना है उसका भी नाम राम है। परशुराम जी बोले कि वो कौन राम है, पहले तो मैं जानना चाहता हूं कि संसार में दूसरा राम कहां से आ गया, इस संसार में तो केवल एक ही राम होना चाहिए, वो है परशुराम, पर दूसरे राम कहां से आ गया। तब लक्ष्मण जी का दिमाग खराब हो गया और लगा, और परशुराम जी खूब गाली देने लगे राम को, ये है वो, इसकी इतनी हिम्मत हिम्मत है तो ये कर वो कर, सुना दशरथ का पुत्र है, बनता रहता है, ये किया वो किया, सब कुछ गाली करने लगे। तो लक्ष्मण जी सहन नहीं कर पाए, लक्ष्मण जी ने परशुराम, मैं लक्ष्मण हूँ अनंत शेष, मेरे से युद्ध कर, मैं अपने राम का अपमान नहीं, तुरंत लक्ष्मण ने बाहर निकाला परशुराम जी से युद्ध करने को, तुरंत ये पड़े टूट पड़े। तब भगवान ने रोक दिया, देखो लक्ष्मण ये परशुराम जी है, इनका सम्मान करो। उसको लक्ष्मण को शांत कर दिया और फिर राम ने परशुराम जी से बातचीत की, और परशुराम जी ने बातचीत में कहा कि यदि तुम वास्तव में भगवान विष्णु हो, विष्णु धनुष तोड़ के दिखाओ, इस पर प्रत्यक्ष चढ़ा के दिखाओ। तो जैसे भगवान विष्णु का धनुष राम के हाथ में चला गया, तुरंत राम ने अपना उसको विष्णु को दिखा दिया। तो परशुराम जी समझ गए कि ये वास्तव भगवान है। फिर ऐसा एक और प्रसंग आता है कि जब कैकेयी के कहने पर श्री राम, कैकेयी के कहने पर श्री राम और सीता को वन में जाने का आदेश हुआ था, उस समय भी लक्ष्मण जी को बोला था, और उसने कहा कि कौन है दशरथ, राम से आगे बोले दशरथ कौन है, हुई दशरथ, अयोध्या किसकी बताइए, आपकी है, जहां राम है वो अयोध्या है और अयोध्या आपकी है, दशरथ की अयोध्या नहीं है, दशरथ है कौन आपको निकालने वाला। इसी समय में जाकर दशरथ का सर उसके शरीर से अलग कर देता है, दशरथ जी को मार देता। तो ये बलराम जी का मूल, ये है लक्ष्मण जी का मूल। तो इस तरह से बलराम जी लक्ष्मण जी को क्रोधी स्वभाव कहते हैं, मतलब थोड़ा उनका पेशेंस थोड़ा कम था, लीला है उनकी, लीला है। लेकिन वही लक्ष्मण, वही बलराम जी जब कलयुग में नित्यानंद रूप बनकर आते हैं तो उनका भाव बहुत अलग होता है। चैतन्य महाप्रभु जब आदेश देते हैं सुन सुन नित्यानंद सुन हरिदास सर्वत्र हमारा आज्ञा कर प्रकाश, जाओ प्रतीक घर, मेरा ये आदेश है, जाओ घर घर में जाओ और हरि नाम की भिक्षा मांगो,
तो नित्यानंद प्रभु और चैतन्य प्रभु, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर घर घर में जाकर सबसे भगवान भगवान नाम की भिक्षा मांगते हैं। वही लक्ष्मण, वही बलराम कलयुग में हम सब जीवों पर दया करने के लिए नित्यानंद प्रभु बनकर आए हैं और हम सबसे भीख मांग रहे हैं कि हम लोग भगवान की शरण ग्रहण करें, भगवान चैतन्य महाप्रभु की शरणागत लें, भगवान चरण भगवान को अपना जीवन समर्पित करें। तो ये नित्यानंद प्रभु ही श्री बलराम है और श्री लक्ष्मण जी है। तो कलयुग में आने का उनका अभिप्राय है कि हम सब पतित जीवों को कृष्ण से जोड़ना है। वे बलराम जी जो एक जो पृथ्वी को अपने अनंत अनंत अपने शेष अपने सिर पर धारण करते हैं, और वही बलराम जी जो असुरों को मारने के लिए कभी देखते नहीं है, असुरों को बहुत सारे असुरों को मारा है, वही बलराम जी कलयुग में जगाई और मदाई का मार तक सहन किया, मतलब हमारा मार तक सहन किए और फिर भी उनसे भिक्षा मांगे कि हे प्रभु आप लोग भगवान हरि का नाम लीजिए। तो ये कितने दयालु प्रभु हम लोग दया करने के लाए हैं। तो हम लोगों पर हमें बलराम से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे बलराम जी, हे दाऊ, हमें भगवान श्री कृष्ण के चरण हमेशा भगवान श्री हरि के प्रेमी भक्तों की संगति में रखना, हमें हमेशा आपके भक्तों की संगति में रखना, ताकि हम हमेशा आपके गुण रूप लीला आदि का श्रवण किया करें। और आप बलराम जी आदि गुरु है, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमें भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में आसक्ति दीजिए, प्रेम दीजिए, ऐसी कृपा कीजिए कि हम इसी जन्म में उनके धाम को प्राप्त कर जाए। तो ये है बलराम जी का दिव्य चरित्र।